الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, we are thrilled to welcome you back to another episode of Prophetic Stories. So far in this program, we have discussed the stories of Prophet alayhimus salam. And during the month of Milad, we are focusing on the seerah of the last Prophet sallallahu alayhi wasallam and the life stories of last Prophet sallallahu alayhi wasallam. Now, we are going to start today's episode with the excellence of Durud-e-Pak. हदीस से पाक का मफहूम है कि जो लोग ऐसी गैदरिंग्स में बैठते हैं कि जहां अल्लाह पाक का जिक्र ना हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए, तो बरोज़े कयामत उन लोगों को उन गैदरिंग्स पर अफसोस होगा, और अल्लाह पाक अगर चाहे तो उन्हें उस पर सज़ा देगा, और अगर अल्लाह पाक चाहे तो उन्हें मुआफ़ फरमा देगा। नाज़रीन, हम भी रोज़ाना कई ऐसी गैदरिंग्स में बैठते हैं कि जहां हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को जिक्र करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमारी भी कोई भी गैदरिंग, कोई भी मजलिस, कोई भी महफिल ऐसी ना हो कि जहां हम अल्लाह पाक का जिक्र ना करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरीज में से बहुत सारे वाकयात माइग्रेशन के भी मिलते हैं, और उन वाकयात में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के इस एपिसोड में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरीज में से हिजरत के कुछ वाकयात पेश करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले हिजरत हबशा के बारे में। नाज़रीन, जब कुफ्फारे मक्का के बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम मुसलमानों पर बढ़ने लगे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हबशा का इंतखाब इसलिए किया गया कि वहाँ का बादशाह, जिसका लकब नज्जाशी था, ये आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था, और इसी के साथ साथ वो एक बहुत ही रहम दिल बादशाह भी था। नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करके पनाह लेने का हुक्म फरमाया। ऐलान नबूवत के पांचवें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 खवातीन ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। नाज़रीन, ये लोग जब उस सफर पर रवाना होने लगे, तो कुफ्फारे मक्का को इनका पता चल गया कि मुसलमान हिजरत कर रहे हैं, तो कुफ्फारे मक्का ने उनका पीछा किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होके काफी आगे बढ़ चुके थे, इसलिए कुफ्फारे मक्का नाकाम लौटे और वो मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचा सके। नाज़रीन, जब ये लोग वहां पर पहुंच गए, ये काफिला वहां पर पहुंच गया, तो मुसलमान अपनी जिंदगी खुशी खुशी अमनो सलामती के साथ और अल्लाह पाक की इबादत करते हुए बसर करने लगे कि अचानक खबर फैली कि कुफ्फारे मक्का मुसलमान हो गए हैं। तो इनमें से कुछ लोग वापस मक्का की तरफ लौट आए और कुछ लोग वहीं रुके हबशा में। जब ये लोग जो काफिले में से मक्का वापस लौटे थे, जब मक्का पहुंचे, तो इन्हें पता चला कि वो खबर सही नहीं थी। कुफ्फारे मक्का की अभी वही हालत थे, वो मुसलमानों पर उसी तरह जुल्म कर रहे हैं, तो वो लोग वहां पर रूपोश होकर जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन कुफ्फारे मक्का ने उन लोगों को ढूंढ लिया और मजीद उन पर और ज्यादा जुल्म किए, पहले से भी ज्यादा बढ़कर। तो फिर मुसलमानों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की, और इस बार हिजरत करने वालों की तादाद में 83 मर्द थे और 18 खवातीन शामिल थी, जिन्होंने हबशा की तरफ दूसरी मर्तबा हिजरत की। नाज़रीन, सीरत के वाकयात में से एक बहुत ही अहम वाकया यानी शोबे अबी तालिब का वाकया है, जो ऐलान नबूवत के 7 साल बाद पेश आया। मामला कुछ यूं हुआ कि कुफ्फारे मक्का ने देखा कि मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है, लोग जो है बहुत ज्यादा मुसलमान होते जा रहे हैं तेजी से, और लोग मुसलमानों के काफिले में शामिल होते जा रहे हैं, ईमान को एक्सेप्ट करते हुए, दीन को एक्सेप्ट करते हुए। तो उन लोगों ने देखा कि अब तो हज़रत उमर और हज़रत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे बहादुर नौजवान भी मुसलमानों के काफिले में शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और बहुत गमगीन थे, और अपने गुस्से की वजह से वो तमाम सरदारान जो कुफ्फारे मक्का के बड़े बड़े सरदार थे वो जमा हुए और उन्होंने इसकी तहरीक चलाई, कहा कि हम एक मुआयदा करते हैं और उस मुआयदे को कुछ इस तरह करेंगे कि बनू हाशिम वाले जब तक मुआज़ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना कर दें, तब तक बनू हाशिम के खानदान में से कोई भी मक्के में से ना कोई मेलजोल रखेगा, ना कोई बातचीत करेगा, ना कोई उनसे खरीदो फरोख्त करेगा, और उन्हें ऐसी जगह महसूर कर दिया जाएगा जहां उन्हें खाने पीने की कोई अशिया तक ना पहुंच सके। अजीन फिर मजबूरन अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर और दीगर खानदान को साथ लेकर जिसमें कुफार भी शामिल थे बनू हाशिम के, उन तमाम लोगों को लेकर एक जगह हिजरत की। ये वो मकाम था जिसे शोबे अबी तालिब कहा जाता है। ये पहाड़ी पर एक मकाम था, यहाँ मुसलमानों ने पनाह ली और वो वहाँ पर कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने लगे कि उनको एक हदूद तक महदूद कर दिया गया था। फिर इस बात को तकरीबन 3 साल गुजर गए कि मुसलमान बहुत मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और हालत ये हो चुकी थी कि मुसलमानों के पास खाने के लिए सूखे पत्तों के सिवा कुछ नहीं था। फिर अल्लाह पाक ने कुछ सरदारान के दिलों में रहम डाला और उन लोगों ने ये तहरीक चलाई कि ये बहुत ही गलत हो रहा है बनू हाशिम ख़ानदान के साथ। फिर उनमें से एक सरदार था, उसने तमाम लोगों को जमा किया और सबके सामने एक तकरीर की और पुरजोश अंदाज में ये कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि हम तमाम लोग जो मक्के में रहा करते थे, हम तमाम तो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बसर कर रहे हैं, हमारे पास तमाम ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी में हैं, लेकिन ये कहीं का इंसाफ नहीं है कि बनू हाशिम का पूरा ख़ानदान उस जगह इस तरह जिंदगी बसर कर रहा है कि उनके बच्चों तक के पास कुछ खाने को नहीं है। फिर उन्होंने ये तहरीक चलाई और फिर लोगों को ये बात समझ में आई और लोग भी इस बात पर कायल हुए कि ये बनू हाशिम के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। नाज़रीन फिर दोबारा उन लोगों ने एक मुआहिदा किया और दोबारा अबू तालिब को बुलाया। जब अबू तालिब वहाँ पर बैठे और उन्होंने बताया कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहते हैं कि जो मुआहिदा तुमने पहले किया था कि बनू हाशिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा और उनके साथ कोई मेलजोल नहीं करेगा, खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, वो तो कहते हैं कि वो मुआहिदा तो तमाम कीड़ों ने खा लिया है सिवाय अल्लाह के नाम पर, यानी उस मुआहिदे में जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ था वो सलामत है, उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा मुआहिदा कीड़ों ने खा लिया है। तो तुम जाकर देखो, अगर ये बात सच्ची है तो फिर तो ठीक है, अगर ये बात सच्ची नहीं है तो मैं खुद तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नाज़रीन जब लोगों ने जाकर वो मुआहिदा देखा तो ये बात बिल्कुल हकीकत थी कि उस मुआहिदे में जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का नाम दर्ज था वो जगह सलामत थी, उसके अलावा बाकी तमाम मुआहिदा कीड़े खा चुके थे। फिर लोगों को ये बात समझ में आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं, तो फिर उन लोगों ने पुराना मुआहिदा ख़त्म कर दिया। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो जो पहले वाला मुआहिदा था कि जिसमें ये लिखा गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान से और तमाम बनू हाशिम से कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा, उस मुआहिदे को लिखने वाला जो शख्स था उसके हाथ पर अल्लाह पाक का अजाब आया और उसके हाथ पूरी तरह शल हो गए। नाज़रीन शोबे अबी तालिब के वाक़े के बाद चंद ही रोज गुजरे थे कि कुफार के जुल्म व सितम से कुछ अमान मिली थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बीमार हो गए और तकरीबन 8 माह के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात हो गई। नाज़रीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही मोहब्बत और शफकत पेश की थी। ना सिर्फ मोहब्बत और शफकत बल्कि जब भी कुफ्फार मक्का ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम किए या उन्हें तंग करने की कोशिश की तो अबू तालिब ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया और जान निसारी के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। इस वजह से जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حادثہ بہت ہی غمگین محسوس ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی وجہ سے بہت غمزدہ ہوئے۔ ناظرین ابھی ابو طالب کی وفات کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ابو طالب کی وفات کی 3 یا 5 دن کے بعد ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں کی وفات کا ہونا بہت ہی غمگین تھا کیونکہ ان دونوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا، جانی بھی ساتھ دیا، مالی بھی ساتھ دیا اور ہر معاملات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ناظرین جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر انہیں زمین کے سپرد فرمایا۔ ناظرین ان دونوں کی وفات کی وجہ سے ہسٹورین اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں اور ہسٹری میں سیرت میں اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں کی وفات کا ساتھ ہونا بہت ہی غمگین تھا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے دین کو پھیلانے کے لیے تکالیف برداشت کیں اور یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان سیرت کے واقعات سے ہم بھی سیکھیں اور دین اسلام کو آگے پھیلانے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے اوپر بھی دینی اصولوں کو نافذ کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں اور دین اسلام کے لیے اپنی کوششیں پیش کریں۔ ناظرین اسی کے ساتھ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں۔ اینڈ وی ول میٹ اگین انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ یو کین گڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔